महाप्रभु विसर्जन इंद्र एट नदी देयर इज आल्सो गोद्रम द्वीप एंड देयर इज आल्सो सुरभि कुंज आल्सो देयर इज अ सुरभि कुंज इट इज सुरभि कुंड कुंड मीन्स पॉन्ड सरोवर एंड कुंज कुंज मीन्स रूफ So, there in the form of a tree, Indra did tapasya and again with the help of Surabhi and in Surabhi Kund, when Mahaprabhu came, and Mahaprabhu is Mahavadanyaya, very highly benevolent and merciful, he was forgiven totally and Indra came out, became free from his apradh. So this place is very powerful for us to get our apradh of life together exempted. We should pray to Surabhi Mata and Deshkun that knowingly, unknowingly we are committing so many offenses. That is because of these offenses when we chant Krishna, we cannot understand that Krishna name and Krishna is the same. And as sattvic bhav, that is tears and romance does not come to our body. If we become, we chant offenselessly, then we can really taste and can understand that Krishna and the name is same. So we should pray from the core of our heart so that our apradh should be exempted. Hare Krishna.
Hare Krishna.
Parikshit Maharaj brought some Brahman and some other human beings and they happily landed over this place and since then the life came in this place. At that time, with the help of Chandriya Rishi, who was present in the time of Krishna's
Leela,
Parikshit Maharaj, Asura, Chandriya Rishi, they have Parikrama and they have made symbols on those places where the different Leelas took place. So, at the Uttarapur, they started doing Kirtan because they needed
to hear. Tired?
जी वहां से कूदे और पहुंच गए हिमालय में और वहां से उनके पुत्र किसके पुत्र द्रोण के पुत्र उनको उखाड़ लिया बहुत सुकुमार उनके बेटे हैं और सब जगह हरियाली है जलप्रपात है मानसी गंगा और ये सब जो कुछ देख रहे हैं इसके चारों तरफ में सब गोवर्धन के अंतर्गत इसलिए वो पूरे को उखाड़ लिया हनुमान जी ने और हथेली पर ले करके जब यहाँ पर आए तो रामचंद्र जी का भेजा हुआ दूत यहाँ आया बोला जी हनुमान जी अब यहाँ पर पत्थर रख दीजिए अब जरूरत नहीं है पुल बन चुका है इसलिए रामचंद्र जी ने आदेश दिया है कि जो जहाँ पर पत्थर उठा करके ला रहे हैं
वो वहीं रख दे
अब वहीं पर रख दे हुआ क्या गिरिराज कृष्ण के बड़े प्यारे हैं जब यहाँ पर आए हनुमान उनको लेकर के तो उन्होंने प्रार्थना की कृष्ण से मैं यहाँ छोड़ करके कहीं नहीं जाऊंगा इसलिए आप अवश्य कोई व्यवस्था करें जो मुझको इसी ब्रज में रखा जाए और नहीं तो मैं खुद ही यहीं पर उतर जाऊंगा आप फिर कोई नहीं उठा सकता है इसलिए हनुमान जी ने उनको यहीं पर रख दिया तब से यहाँ हनुमान जी और दूसरी कथा एक और है काशी के एक बड़े भारी तपस्वी थे पुलस्त ऋषि जी, उन्होंने देखा जो ब्रजमंडल तो बड़ा सुंदर सुहावना और बड़ा हरा भरा है, किंतु काशी तो उजड़ी हुई है। गंगा यद्यपि है मरुभूमि से है, पेड़ पौधे नहीं है, न पहाड़ है न कुछ है, न सरोवर है न और कुछ है, एक तरफ से गंगा जी बह रही है। सचमुच में जब हम लोग काशी में जब हम लोग गए एक बार कुछ दिन पहले, तो नौका में चढ़ करके जा रहे थे, देख रहे, देखा वहां पर गंगा के किनारे मरुभूमि से बन रही है और एक साथ में 50 चिताएं जल रही हैं। एक दो नहीं, देखा था मणिकर्णिका घाट, मणिकर्णिका उस घाट में 50 चिताएं जल रही हैं फट 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 कर, और उसमें लाल नीले ये सब रंग रक्त जो जल रहा है ना, इसलिए सब लपटे निकल रही है। वो इसी काशी में लोग आते हैं, कहा हमारा ब्रज का देखो जमुना की और कहा यहाँ की शोभा। तो ऋषि ने देखा और देख करके बोले, मैं इस यहाँ पर कोई यदि पर्वत ले आता और पूरी हरी भरी यहाँ पर काशी हो जाती तो सुंदर में ये यथार्थ में ये स्वर्ग से भी बड़ी सुंदरी हो जाती। इसलिए वहां पर गए, द्रोणाचल को देख करके उनके मुख में पानी भराया, देखा जी इतना सुंदर। उनके पिताजी से कहे, आप जानते हैं मैं ऋषि हूं, विश्वामित्र जी ने दशरथ से राम और लक्ष्मण को मांग करके ले आए थे और यदि नहीं देते तो विषम पाप कर देते, इसी तरह से मैं भी आपके बेटे को मैं मांग रहा हूं, आप यदि दीजिए नहीं तो आपको जला करके भस्म कर दूंगा। डर गए वो, बोले ये सचमुच में बड़ा तेजस्वी ऋषि है, अच्छा हमारे पुत्र को तुम मना लो। पुत्र के पास में गए, गिरिराज गोवर्धन के पास में, बोले ये देखो तुम्हारे पिताजी ने आदेश दिया है तुमको हम काशी में ले जाएंगे शंकर के निकट में, तुम हमारे साथ में चलो और यदि नहीं चलता तो मैं तुम्हें जला दूंगा। उन्होंने कहा भाई जलाओ टलाओ मत हमको, मैं तुम्हारे साथ में चलने के लिए तैयार है, क्योंकि एक शर्त है, बीच में कहीं न मत रखना और अपवित्र होकर के हमको मत उठाना, नहीं तो मैं नहीं चलूंगा। कंजे यो मस्त, ऐसी बात होगी मैं एक ही साथ ले चलूंगा और पूरे ब्रह्मचर्य के साथ में रहूंगा, पवित्र रह करके स्नान करके मैं तुमको ले चल रहा हूँ, बीच में कहीं नहीं उतारूंगा, यदि उतार दिया तो मैं वहीं रह जाऊंगा। ठीक है, जब यहाँ आए गिरिराज गोवर्धन जी ने ऐसी प्रेरणा की कि लग गया उनको लघु शंका लग गई, बड़ी जोर से प्रचार करने की लालसा हुई और ऐसा हुआ जैसे उनको चट रख दिया और रख करके पेशाब करते लगे, घंटों लग गए, करते 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 बंद ही नहीं हो। गिरिराज जी आराम के साथ यहाँ पर बैठ गए, कहा जब मैं जरा सो लूं तो बस वो सो गए, पीछे की तरफ उधर और आगे की तरफ इधर में विश्राम कर रहे हैं। जब वो स्नान करके पुनः आए, बोले जी अब तो चलो मैं पवित्र होकर के आया, कहिए आपको याद नहीं है जो मैंने कहा था जब जहाँ रख दोगे वहां से उठूंगा नहीं, अब मैं नहीं उठता। उतार दिया मैं नहीं चलूंगा, तो मैं स्नान करके पवित्र होकर के आया हूँ, आपसे यही शर्त थी, अब मैं यहाँ से कदापि नहीं जाऊंगा, तो तू नहीं जाएगा, तू नहीं मानेगा तो मैं नहीं जाऊंगा, तो देखो तुम नहीं जाएगा आज से तुमको श्राप देता भी संपात करता हूँ, तुम दिन दिन में तिल तिल करके क्षय हो जाएगा, तुम टुकड़े टुकड़े हो जाएगा और कुछ दिनों के बाद में तुम्हारा अस्तित्व ही नहीं रहेगा। एवं मस्तु हमको ऐसा मंजूर है, मैं कृष्ण की लिए अभी आ रही है अभी कुछ दिनों में, अंततः उसको तो मैं देख लूंगा और उनके चरण गोपियों के चरण हमारे ऊपर में पड़ जाएंगे, हमारा जीवन सार्थक हो जाएगा। बस गिरिराज यहाँ से उठ करके नहीं गए, तब से गिरिराज जी यहीं पर हैं, उनके नित्य लीला के परिकर हैं, देखने से मालूम होता है ये द्रोणाचल के पुत्र है या क्या है, असल में ये ऐसी बात नहीं, कृष्ण के वो नित्य लीला के परिकर हैं। जब कृष्ण आते हैं तो उनके साथ में गोपियां नंद बाबा सभी आते हैं, गिरिराज गोवर्धन आते हैं, जमुना आती है, 84 कोस की भूमि वहीं से आती है। यहाँ पर आप लोग इस समय में पृथ्वी पर नहीं चल रहे, अभी कहाँ चल रहे हैं, वो धाम है। हम
हमको दिखाई नहीं पड़ रहा है। आज हम धाम की परिक्रमा कर रहे हैं, गिरिराज गोवर्धन की परिक्रमा कर रहे हैं, जो इस परिक्रमा में आए हैं, किसी प्रकार से सहायता किए हैं, उन सबका ये गिरिराज जी कृपा करेंगे, उनकी मनस्कामनाओं को पूर्ण कर देंगे। यदि धन धान्य चाहिए, पुत्र लक्ष्मी ये सब चाहिए, वैकुंठ स्वर्ग चाहिए, तो वो चुटकी बजाते बिना मांगे ही दे देंगे। रही वैकुंठ की बात, उसको भी दे देंगे। द्वारका में रहने की रुक्मिणी सत्यभामा जैसी भी इच्छा हो तो वो दे देंगे सहज ही। किंतु ब्रज में जन्म हो और ब्रज में राधा कृष्ण की भक्ति हो और उनकी एकांत प्रेम हमको हो, राधा जी की दासी होकर के उनकी सेवा, ये बड़ा भारी मुश्किल है। किंतु गिरिराज जी उसको भी दे देते हैं सोच समझ कर। तो हम लोग यहाँ पर आए हैं, यहाँ पर मथुरा के आप लोगों ने सुना जो बड़े बड़े धनी मानी लोग हैं, वहीं के हमारे, उनका नाम भी गोवर्धन था, इनके पिताजी का नाम अभी क्या नाम,
बलवीर सिंह,
बलवीर सिंह जी हैं, और उनके पिताजी गोवर्धन, और गोवर्धन की यहाँ पर स्थापना कराई। और यहाँ पर जब से हम हैं 1954 की वापसी में से, जब जब आते हैं हमारे साथ में 400-500 हजार आदमी रहे, इस समय तो हम लोग बहुत ही कम 150-200 हैं, 400-500 आ जाते हैं। सब लोगों को विचित्र प्रसाद गिरिराज जी का देते हैं। तो मैं गिरिराज जी से प्रार्थना करता हूँ ये जब तक लोग ये हैं, इनके वंश परंपरा तक सबको ऐसा ही धन धन्य से पुरपुरत रखते हुए परलोक को देना न भूलें, और ये लोग भी परलोक कृष्ण की भक्ति, राधा जी के चरणों में भक्ति इन लोगों की हो, इनके सब परिवार के लोगों को हैं को हो, और हमारे साथ में जितने लोग भी आए हैं सबके राधा कृष्ण के चरणों में यही प्रेम गिरिराज गोवर्धन हम लोगों को दो दें। बहुत विलंब हो गया, आप लोगों को भूख भी लगी है, पैर भी आप लोगों के थक गए हैं, इसलिए अधिक समय नहीं लेकर के अब गिरिराज जी की आरती होगी, और आरती के बाद में जहाँ व्यवस्था यहाँ हो रही है वहाँ पर आप लोग बैठ करके आप लोग प्रसाद पाइए, एक घंटा घंटा विश्राम करके 3 बजे हम लोग यहाँ से फिर निकलेंगे, और धीरे धीरे कीर्तन करते हुए, कोई डरने की बात नहीं है, थक जाने भी कोई बात नहीं है, थोड़ा सा सुस्ता लेंगे और सब ठीक हो जाएगा, हम भी साथ में चल रहे हैं, कोई चिंता की बात नहीं। बोलो गिरिराज धरती की जय, गिरिराज धरती की जय, गिरिराज धरती की जय।
रघुनाथ दास गोस्वामी जबकि श्री चैतन्य महाप्रभु अंतर्धान लीला किए, एक एक करके सर्व दामोदर आरामंद आदि समस्त गोस्वामी वर्ग जब अंतरहित हो गए, तो उनके विरह में व्याकुल हो करके ब्रजमंडल में आए। आ करके उन्होंने पहले ही संकल्प लिया कि भृगुपात करके गिरिराज गोवर्धन पर अपने शरीर को छोड़ देंगे। तो श्रील रूप गोस्वामी पाद, श्रील सनातन गोस्वामी पाद, इन लोगों ने उनको समझाया, बोले कि नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, जब तक शरीर है तब तक रह करके हमें राधा कृष्ण के विरह में कलातिपात करना है। तो इस प्रकार उनके आदेश से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद यहाँ आ करके राधा कुंड में पेड़ के नीचे बैठ करके इसी जगह भजन करते थे। 24 घंटे में केवल एक दोना मट्ठा पीते थे और कुछ नहीं, इसी केवल एक दोना मट्ठा पी करके निरंतर भजन करते हुए यहीं पर रहे। कि एक दिन चारों ओर घनाघोर जंगल था, तो एक दिन दो बाघ टाइगर आकर के पास में इसी कुंड में पानी पीने लगे। दूर से सनातन गोस्वामी जी ने देखा कि यहाँ बाघ घूमते हैं, तो ये देख करके उनसे कहा कि ये पत्ते की और फूस के एक कुटिया बना देते हैं, उसी में आप रहा करें, क्योंकि यहाँ बाघ भल्लू हैं, हिंसक जानवर हैं, कभी कुछ हो जाए तो यहाँ पर फोटों में भी देखते हैं या ऐसे ग्रंथों में भी देखते हैं कि जब कि बाघ आते हैं तो दूर से किशोरी जी खड़ी होकर रघुनाथ दास गोस्वामी को अभय हाथ दिखाती हैं, जिससे कि बाघ भल्लू भी यहाँ पर कुछ नहीं कहते थे। इस तरह से श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद एक दिन भजन कर रहे हैं, तो मानुषी सेवा करते थे, तो मानुषी सेवा में एक दिन उनको बुखार आ गया तो मथुरा से विट्ठलनाथ जी एक वैद्य कविराज को लेकर के यहाँ उपस्थित हुए, तो कविराज ने उनके नाड़ी पकड़ करके देखा कि इन्होंने आज चावल खाया है, वह अजीर्ण होने के कारण बुखार आ गया है। तो कविराज के कहने से सभी लोग बोले कि ये कैसी बात है, जिन्होंने कभी चावल खाया ही नहीं और उनके लिए इस तरह से बात आपने गलत देखा है, आप सही करके देखिए। बोले कि हमारे देखने में कोई कमी नहीं है, मैं ठीक देख रहा हूँ कि उन्होंने चावल खाया। तब रघुनाथ दास गोस्वामी ने अपना पोल खोला कि मैंने मानसी सेवा में आज ठाकुर जी को भोग लगाया, भोग लगा करके वही चावल प्रसाद और खीर प्रसाद आदि मैंने भोजन किया मन ही मन। तो इस प्रकार मानसी सेवा कितनी ऊँची थी, जो कि राधा कृष्ण राधा जी उनकी सेवा को यहाँ पर प्रकट जगत में प्रकट करने के लिए इस तरह से उनको दिखाया। इसी जगह रह करके निरंतर विरह में विलाप करते थे, इसी जगह उन्होंने विलाप कुसुमांजलि की रचना की है, जो कि राधा जी के विरह में उनकी सेवा की प्रार्थना की। अत्यंत विप्लम्ब के विप्लम्बात्मा विरहमय भजन के जो रूपानु वैष्णवों के एकमात्र आधारशिला है, ऐसे शिला विलाप कुसुमांजलि का यहाँ पर उन्होंने रचना की। इस तरह से दिवारात्र विरह में अधीर हो करके इसी जगह रहकर प्रार्थना करते हैं। जबकि रूप सनातन चले गए तो उनके विरह में इसी राधा कुंड के लिए कहते हैं, सुन्नाय तो महागोष्ठम गिरिन्द्र अजगरायो तो मैं व्यघ्रम तुंडाते कुंडम जीवातु अद्दापि रहितस। और जिस गिरिराज में उन्होंने निष्ठा व्यक्त की है कि यदि श्याम सुंदर द्वारका से बुलाए तो मैं कभी नहीं जाऊंगा, यहाँ राधा कुंड में रह करके विषयी लोगों के साथ में, यहाँ के लोगों के साथ में विषय चर्चा करना पड़े वह भी अच्छा है, फिर भी मैं राधा कुंड छोड़ करके अन्यत्र कहीं नहीं जाऊंगा, ऐसी उन्होंने निष्ठा व्यक्त की। और राधा कुंड के प्रति, वृषभानु नंदिनी के प्रति, और रूप गोस्वामी सनातन गोस्वामी के विरह में कहते हैं कि आज तो ये गिरिंद्र अजगर आए थे, गिरिराज गोवर्धन अजगर सर्प के भाते, तो राधा कुंड एक व्याघ्र के विशाल मुंह के समान ऐसा प्रतीत होता है। तो इस प्रकार गोस्वामीगण अपने गुरु वर्गों के विरह में ऐसी आरती भावना को व्यक्त करके भजन साधन किया है। आज हम लोग यहाँ उपस्थित हुए हैं श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद के चरणों में, हम शत शत बार नमन करते हुए यही प्रार्थना करते हैं, उन्होंने जैसी जैसी भावना प्रार्थना व्यक्त की है हमारे लिए, उसका ये कण भी ऐसी अभिलाषा भी हमारे अंदर में जाग उठे, यही इसी प्रार्थना के साथ में अपना
कृपा से। में चैतन्य महाप्रभु जब आए तो यहाँ राधा कुंड श्याम कुंड नहीं था, पासी में बैठे पूछा जी भाई राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, लोगों ने श्याम कुंड राधा कुंड यहाँ नहीं है, एक काली एक गौरी, ये दो खेत हैं, इसमें धान होते हैं थोड़ा सा पानी। अकबर बादशाह वहाँ अपनी हजारों लाखों सेनाओं को लेकर के आया, घोड़ों को हाथियों को पानी पिलाने के लिए अपने सैनिकों के लिए। रघुनाथ दास गोस्वामी से पूछा भाई कहीं पानी है पास में, बोला जी इसी में पिला लो, तो इसमें तो हमारा एक घोड़ा का भी पानी नहीं हुआ, तो पिला करके तो देखो। तो पिलाया तो जितना पानी का पानी रहा और सब सारी सेना हाथी घोड़े सब पानी उसके पी लिए, खत्म नहीं हुआ। महाप्रभु जी ने काली खेत में कृष्ण कुंड और गौरी कुंड में, गौरी खेत में राधा कुंड को बतला करके वहीं पर स्नान किया और लोगों को ये प्रकाशित किया जी ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। पीछे से इनकी इच्छा हुई रघुनाथ गोस्वामी की जो इसका कुंड का अच्छी तरह से हम प्रकाश करें। जब ही भावना आई तभी बद्रीनाथ से एक कोई सेठ सोने के असरफियाँ लेकर के यहाँ पर पहुँचा, बोले जो उन्होंने कहा है जैसे जाओ वहाँ पर रघुनाथ दास गोस्वामी हैं उनको ये रुपये दे देना और वो कुंड को निर्माण करें। जब यहाँ आए तो वो रुपया देने लगे तो इन्होंने लिया नहीं, कह जैसे ये तो विषय, अरे राधा कुंड तो अपने आप में पूर्ण है, हम उनको देख नहीं पा रहे हैं। अंत में बद्रीनाथ ने इनको भी दर्शन दिए कि हमारी सेवा कुछ ग्रहण करो, तब फिर उस रुपये को लेकर के खुदवाने लगे। राधा कुंड को चार कोने से सुंदर बनाया और कृष्ण कुंड को जब खनन करने लगे तो यहाँ पर जहाँ पर देख रहे हैं एक पेड़ है, ऐसे ही यहाँ पर पांच पेड़ थे, नीम का एक पेड़, एक नीम का पेड़, एक बट का और एक तमाल का, एक कदम्ब का, ऐसे ही पांच पेड़ थे। हमने इन पांचों पेड़ों को देखा है। अब वो धीरे 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 ये अंतिम था, ये भी चला जाए। एक नीम का पेड़ अलग से लगा रहे हैं, दूसरे पेड़ लगा रहे हैं, किंतु पहले वाला सब चला गया। उन पांचों ने इनको कहा, पांचों पांडव हम लोग हैं, वृक्ष नहीं हैं। वृक्ष के रूप में रह करके ब्रज भाव को लाने के लिए हम तपस्या यहाँ पर कर रहे हैं, आराधना कर रहे हैं राधा जी के मंत्र से, इसलिए आप हम लोगों को छेड़िए मत, हम लोगों को कटवाइए मत, हमारा भजन पूर्ण होने दीजिए, बल्कि आप उनके नित्य सिद्ध परिकर हैं, आप हम पर कृपा करें। तब रघुनाथ गोस्वामी ने वृक्षों को छोड़ दिया और जैसा टेढ़ा है वो कृष्ण का कुंड, जैसे कृष्ण टेढ़ा, तेरी मैया टेढ़ी, तुम्हारी नजरिया टेढ़ी, तुम्हारी गोपियां टेढ़ी, तुम्हारी मैया टेढ़ी, तुम्हारी बंसी टेढ़ी, तुम्हारी लक्ष्टू टेढ़ी, तुम्हारा शरीर टेढ़ा, सभी तुम्हारा टेढ़ा, तो वो सीधा कैसे होंगे। इसलिए जैसा कुंड था वैसे ही कुंड को उन्होंने प्रकाश यहाँ पर किया है। पासी में यहीं पर रूप गोस्वामी के साथ में रघुनाथ दास जी बैठे थे और वो चाटू पुष्पांजलि नामक एक स्तोत्र कृष्ण के लिए लिख रहे थे। सातन गोस्वामी जी ने को दिखलाया, उन्होंने देखिए मैंने एक पुष्पांजलि लिखा है। उन्होंने पढ़ा, पढ़ करके पहले श्लोक को ही देख करके बोले, अरे तुमने ये क्या क्या कर दिया। हमारी राधा जी संसार में सबसे मधुर, सबसे श्रेष्ठ हैं और वो अमृत, कोटि कोटि अमृत से भी बढ़ करके हैं, और उनकी बेणी की तुलना तुमने विषधरी बेणी बेलंगना फना,
देवी गोरचना गौरी प्रवरेंदी बरम्बरा मनिस्तवक विद्योति बेनी बेलंगना फना,
तो तुमने काली नागिन से उनकी तुलना दी, ये ठीक नहीं है। राधा जी काली नागिन नहीं हो सकती, उनके बाल ऐसे नहीं हो सकते हैं, तो आप इसको संस्कार कर दिए, संशोधन कर दीजिए। कहिए अच्छा अभी तो मेरे मन में कुछ नहीं आ रहा है, हम इसको पीछे से संशोधन कर देंगे। सोचते सोचते यहाँ से निकले और जब वहाँ पर गए तो देखा उसके उस तरफ में, इस दिशा में, जब वहाँ पर गए देखा एक कदम पर, एक डाल पर झूला झूल रहा है और एक छोटी सी किशोरी झूल रही है, उसको आठ सखियाँ झूला रही हैं, और जो सखी जो झूल रही है उसके केस पर सांप नागिने चढ़ी हैं और ऐसे मानो डसने वाली है। अरे लाली 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 ये क्या, देखो ठहरो ठहरो। इतने में उसने उनके तरफ में देखा, मुस्कुरा दिया और फिर लीला ही समाप्त हो गया। जब वहां पर पहुंचे देखा अरे वो कहाँ गया, क्या हुआ, ये कौन थी। और रूप गोस्वामी ने जो लिखा वो ठीक है, वो कभी भी भूल नहीं हो सकता है, वो उनकी खास कमरे की हैं, उनकी प्रिया हैं, इसलिए उन्होंने ठीक लिखा है। अब संशोधन करने की जरूरत है, हमारे संदेह को दूर करने के लिए ये ऐसा ये दृश्य हुआ। इसलिए सनातन गोस्वामी जी रूप गोस्वामी के गुरु हैं, बड़े भाई हैं, पिता तुल्य भी हैं, किंतु उन्होंने उनको गुरु के रूप में माना और रूप गोस्वामी तो उनको गुरु मानते हैं, इसलिए वहाँ का संबंध कुछ ही दूसरे तरह का, यहाँ का संबंध अभी गुरु शिष्य का संबंध अभी हम लोगों के दिमाग में नहीं आएगा, कभी दिमाग में नहीं आ सकता, जड़ बुद्धि है ना, वहाँ पर जड़ बुद्धि नहीं है। कृष्ण समस्त ब्रह्मांडों के प्रभु हो करके राधा जी के चरण में पन्निया पाते हैं, बार बार मस्तक टेकते हैं, ये साधारणों के लिए बुद्धिगम्य है, यही प्रेम है। उन लोगों में भी ऐसा प्रेम है, जगत का प्रेम नहीं, वैकुंठ का प्रेम नहीं, द्वारका का प्रेम नहीं, अयोध्या का प्रेम नहीं, ब्रज की वो खास वो लोग हैं, वो लौंग मंजरी हैं, वो रूप मंजरी हैं, इसलिए एक दूसरे को गुरु कहते हैं, इसमें कोई भी असंभव नहीं है, ये हो सकता है, उनका भी संदेह दूर हो गया। ऐसी यहाँ पर हजारों कथाएं हैं, हमारे रूप गोस्वामी ने, सनातन गोस्वामी ने और सब लोगों ने वर्णन किया है। अभी ये हम जहाँ पर खड़े हैं ये रूप मंजरी जी का ये कुंज है, उसमें हम लोग खड़े हैं, जहाँ दोनों कुंड मिले हैं और थोड़ा सा राधा कुंड बढ़ गया है इधर, और यहाँ पर जो खाली स्थान है यही रूप मंजरी का स्थान है, और रूप मंजरी की जितनी सखियाँ हैं इसी तरह में रहती हैं। इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी जी और जितने हैं सब भक्ति विनोद ठाकुर इत्यादि प्रभुपाद, हम लोगों के भक्ति सिद्धांत सरस्वती इत्यादि सबका कुंजी यहाँ पर है। सखाओं के उधर में कुंज है, उन लोगों ने सखियों को ललिता विशाखा इत्यादि को अपना कुंज दे रखा है। इस तरह से ये अप्राकृत सर्वोत्तम धाम है, भजन की पराकाष्ठा से बढ़कर के और कुछ नहीं। अंतिम हमारा गोल भी वहीं पर है, अभी नीचे में हम लटपटा रहे हैं, किंतु हमारा भी ऐसा ही होना चाहिए। यदि रूप गोस्वामी के चरणों में आ गए, इस गुरु परंपरा की लाइन में आ गए, और हम लोग वहां पर नहीं पहुंचने की कोई चेष्टा करें, हमारा जैसा दुर्भाग्य जगत में कोई भी पैदा नहीं हुआ, इस चीज को अच्छी तरह से समझ लिया जाए। इसलिए आज रघुनाथ दास गोस्वामी, कृष्णदास कविराज गोस्वामी हमारे ऊपर में कृपा करें। विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी का वहाँ पर समाधि है, कृष्णदास कविराज गोस्वामी यहीं पर बैठ करके चरितामृत को पूरा किया। आरंभ किया था कहाँ से? मदन मोहन जी के, मदन मोहन क्या है, राधा दामोदर वाले में, जहाँ पर फिर गोस्वामी का भजन कुटी, वहीं पर उनकी वैष्णव की राजसभा थी, वहीं से उन्होंने आरम्भ किया। जीव गोस्वामी इत्यादि जहाँ पर रहते थे, यहाँ पर बीच बीच में आते थे। सब गोस्वामी को जाने के बाद में रघुनाथ दास गोस्वामी खूब दीर्घायु थे, इसलिए रघुनाथ दास गोस्वामी से कृष्णदास कविराज की भेंट हुई, और उन्होंने अपने सारे स्वरूप जी का खर्चा, मुरारी जी का खर्चा और सब खर्चा उनको दिया, और मुख्य जबानी जितनी बातें थी रूप सनातन इत्यादि की बातें सब उन्होंने कही, तब ये चैतन्य चरितामृत बना है, समस्त ग्रंथों का सार है। आज हम लोगों का सौभाग्य जिस ग्रंथ को हम लोग पाते हैं और यहाँ पर हम लोग आते हैं, इसी भावना के साथ में आए। जो रूप गोस्वामी जी, रघुनाथ दास गोस्वामी जी कृपा करें, जिसकी कृपा के आधार पर हम राधा कुंड और श्याम को समझ सके, और श्याम कुंड का भी आराध्या राधा कुंड को भी हम लोग समझ सकें कि क्यों ऐसा है। राधा कुंड के और यहाँ की जो उत्पत्ति की बात है मैं समय अनुसार से पीछे बतलाऊंगा, और इस सबको प्रणाम करके फिर हम लोग इधर से निकल करके चले जाएंगे। बोलो रघुनाथ दास गोस्वामी की जय। श्री श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी की जय। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी जय। सर गोस्वामी भर्ग की जय। समवेत भक्तविंद की जय। राधा कुंड श्याम कुंड की जय। सचिनंदन गौर हरि की जय।
उधर दरवाजा खोल दिया उन्होंने,
तो चलिए
कृष्णदास कविराज
भाई।
क्या बोला? ऐसा समझ ये
राधा कुंड और श्याम कुंड के, राधा कुंड और श्याम कुंड के, राधा कुंड श्याम कुंड के चारों तरफ में और चारों कोनों में ललिता विशाखा, चित्रा, चंपकलता, इंदुलेखा, रंगदेवी, सुदेवी, ये सब सखियों का और आठ सखियों का, और फिर रूपमंजरी, रति मंजरी इत्यादियों का, कोटि कोटि गोपियों का ये कुंड सब हैं। कुंड बने उनके कुंज हैं, अब कुंड के रूप में बदल गए हैं, है कुंज असल में,
पिघल गए भी
स्मृति के लिए रख के बढ़ाने के वजह से सब गड़बड़ हो जाता है। तो इस तरह से ये कुंड चारों तरफ में, इधर में सखाओं के कुंज थे, सुबल पहले श्रीदाम, सुदाम, वसुदाम, स्तोकृष्ण, लवंग, अर्जुन, मधुमंगल, उज्ज्वल, ये सब उनके सखा लोग हैं, प्रिय नॉर्मल सखा उनके कुंड हैं, किंतु वो लोग उनको आने में संकोच होता है या नहीं आ पाते, इसलिए वो कुंज अपना दे दिया
सखियों को
सखियों ने अथवा सखाओं को यहाँ से भगा दिया और कुंज को उन्होंने अधिकार कर लिया, कैप्चर कर लिया है यहाँ। अच्छा, सखाओं को आने नहीं देती वहाँ यहाँ से, क्योंकि उन्हीं का साम्राज्य है। यहाँ पर पुरुष रूप में कोई नहीं आएगा, शंकर भी नहीं आ सकते, और भी तो बात क्या है, वो भी नहीं आ सकते। यहाँ पर कौन आएंगे? चंद्रावली इत्यादि आएंगे, वो भी नहीं आएंगी। यहाँ पर तो श्रीमती राधिका की अपनी खास सेवा करने वाली राधा जी का जिन पर विश्वास है, ऐसे रूप मंजरी, रति मंजरी, लवंग और कर्पूर इत्यादि सब मंजरियाँ रहेंगी। इनके बिना अनुगत्य के यहाँ पर कोई भी प्रवेश नहीं कर सकता। पास ही में ये श्री जी गोस्वामी ऊपर से नाम धारण किए हुए हैं, ये हैं विलास मंजरी जी, उनकी खास सखियाँ हैं। गण इनका राधा जी का है जूथ, ललिता विशाखा का ललका का गण है,
और उसकी शिक्षा इत्री है विशाखा जी, और अधिनायकत्व है रूप रद्दी मंजरी इत्यादि का, उसमें हमारा ये गुरु परंपरा चलती है। उसमें यदि कोई आ सके तो उनका जीवन धन्य है। हम लोग ऐसे स्थल पर आए हैं, लोभ हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तभी घूमें कितने जन्म जन्मांतरों के बाद में हम लोग यहाँ। राधा कुंड को यहाँ पर प्रणाम कीजिए, बोलो राधा कुंड की जय, ललिता कुंड की जय, अनन्य समस्त कुंजों की जय। ललिता जी की विशेषता क्या है? राधा जी को शिक्षा देती हैं, कृष्ण को तो दूर रहे, राधा जी को शिक्षा देती हैं। धूर्ते कृष्ण बड़ा धूर्त है, चंपट है, लंपट है, तुम उसके फेर में मत पड़ो। धूर्ते ब्रजंद तनये तनुसुष्ट माम्यम, अंकुश जरा ठीक रखो, सीधा मत करो अंकुश, नहीं तो अंकुश नहीं रहेगा। अंकुश होता है ऐसे, हाथी के कान में दे करके खींच लेते हैं, हाथी बैठ जाता है। राधा जी का मान ही अंकुश है, जो कृष्ण रूपी मत्त गजराज को वशीभूत कर लेता है। इसलिए तुमको मैं शिक्षा देती हूँ, तुम सरल सीधी मत होना, बिना टेढ़ी अंगुली के घी नहीं निकलता। इसलिए तुम टेढ़ी रहना, सीधा हो जाएगी तो तुम्हारा मूल्य कुछ नहीं रह जाएगा। इसलिए तुमको शिक्षा दे रही हूँ, मान में कर्कश रहना और चौकस रहना मान में, नहीं तो वो नहीं मानेंगे। इस तरह से उनको शिक्षा देती हैं। राधा जी कहती हैं जैसे हाय मैं क्या करूं, हमारा मान ही नहीं रह पाता कृष्ण को देखने से, यदि मान ऐसे ये सब शिक्षा देने वाली ये ललिता जी के चरणों में हम कोटि कोटि बार प्रणाम करके हम आगे चल रहे हैं।
Unlimited kunjas all around. Of course, the eight sakis have their kunjas directly around the kund. Then the manjaris have around, and then so many millions and millions of kunjas. This is a completely inconceivable place. And this here is Lalita Sakis kund, and now it has become kund. So,
why you are laughing?
So. Maharaj is saying, what is the special thing of Lalita Sakhi? So, special thing of Lalita Sakhi is that she is giving instruction to Srimati Radhika. That you stay away from, very far from this Krishna. Don't deal straightly or simply with this fellow. You have to be crooked with this fellow. He's crooked. Everything about him is crooked. He's a lumpet and cumpet, I don't even know what these words mean, but just by hearing these words you can understand. I don't know how to translate, but he's lumpet and cumpet and so many. So if you try to deal straight with him, you have to be very crooked to deal with this fella. So she's always giving us so many instructions to Srimati Radhika.
In this way?
So this is a very special thing of Lalita Sakhi.
मैं मान कृष्ण को देख करके हमारा मान पिघल जाता है, मैं क्या करूं? तो आंखें उनकी टेढ़ी होने से कुछ नहीं कर पाते।
How you say that? Hearing.
हम लोग यहाँ पर जो है यहाँ पर चैतन्य महाप्रभु जी का बैठक है। चैतन्य महाप्रभु जी यहीं पर बैठे थे सबसे पहले। उस समय कुंड इत्यादि का पता नहीं था। हमने पहले बताया कि ये दो खेत थे, एक काली और एक गौरी। चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा जे राधा कुंड श्याम कुंड कहाँ है, लोगों नहीं बतला सके। फिर उन्होंने बतलाया जे ये तो काली है और वो गौरी खेत है, इसमें धान लगे हुए थे, थोड़ा थोड़ा पानी था। महाप्रभु जी ने इस खेत में स्नान किया, बोले ये कृष्ण कुंड है और उधर में राधा कुंड है। फिर संगम पर गए और लोगों को प्रकाश किया कि ये राधा कुंड और श्याम कुंड है। रघुनाथ दास गोस्वामी ने पीछे से उसको खोद करके खुदवा करके और सुंदर रूप दिया, ये रघुनाथ दास गोस्वामी का बनाया हुआ है। यहीं पर चैतन्य महाप्रभु जी का वो तमाल का वृक्ष है जिसके नीचे वो बैठे थे। आजकल तमाल भी महाप्रभु जी के विरह में अंतर ध्यान हो गया है। आप लोग यहीं से प्रणाम करके महाप्रभु जी की कृपा प्रार्थना करके फिर हम लोग जुगल घाट में चलेंगे। बोलो सचिनंदन गौर हरि जय, सचिनंदन के घाट की जय, राधा कुंड श्याम कुंड की जय, गौर प्रणाम।
So this is Tamal Tala, this is the place where Mahaprabhu, when he first came here, twice Maharaj has explained this, so now we'll explain it in English. Mahaprabhu came here, nobody knew, where is Radhakund and Shyamakund? He was asking everyone, nobody can tell. They just told, well, there's one paddy field here named Kali, one other paddy field over there named Gauri. So you know Kali means black, Gauri means golden. Mahaprabhu could understand, this is none other than Radhakund and Shyamakund. Sitting here under this tamal tree, he discovered this is the place of Radhakund and Shyamakund. Then later Raghunath Goswami came and he excavated the cones and made them very nice, the way you see them now. This was all done by our Raghunath Das Goswami. So this is the place Mahaprabhu was sitting. Just now there's a lot of construction is going on. This tamal tree, Maharaj says, from separation of Mahaprabhu, he's going away. Also from the monkeys, that's one of the reasons why we're having this done, so that Tamal tree will be protected. If he dies, we're going to take one tamal from Tamal. Tamal told us from his garden we can put one tamal here. our Vrindakun has given some small donation, and other persons from Assam or some places doing rest. We started just to cover the tamal tree, and then somebody said, no, let's fix the whole thing.
Yeah. उन्होंने कहा जो अच्छी बात है, एक छेद इधर से हुआ और उसमें चला गया, नीचे हम जहाँ पर बैठे थे वहीं पर छेद है मिलने का, तो वहीं पर वहाँ का पानी उसमें लेकर के भर गया और कृष्ण ने फिर वहाँ पर स्नान किया, वहीं पर राधा जी की आराधना और पूजा की, तब से उन्होंने राधा कुंड की अधिक महिमा दी। वो प्रभु का ऐसा ही स्वभाव है कि अपने भक्तों का ही, अपनी शक्ति का, राधा जी का ही अधिक मान देते हैं। तब से ये जुगल घाट कहलाया। कृष्ण इधर से हैं, दाहिने और बाएं हैं श्रीमती राधिका जी, दोनों नित्य काल में अवस्थान करते हैं। कृष्ण के दर्शन से जो लाभ होता है, राधा जी के दर्शन से जो लाभ होता है, इन कुंडों में स्नान करने से, स्मरण करने से, ध्यान करने से, स्तौतुति करने से, पूजा करने से वही फल लाभ होता है। बल्कि राधा जी से भी राधा कुंड दयालु है, कृष्ण से भी कृष्ण कुंड दयालु है, क्योंकि हमारे जैसे गिरे गए पतितों के लिए भी हम लोगों के लिए वर्तमान है, हम इनका दर्शन कर सकते हैं, स्मरण कर सकते हैं। कृष्ण को दर्शन करना बहुत दूर की बात है, इसलिए राधा कुंड की, यहाँ पर राधा जी के स्वरूप में कृष्ण जी कृष्ण कुंड के स्वरूप में है। आज हमसे हम प्रार्थना करते हैं, हम उनका स्पर्श नहीं कर सकते, कभी उन्होंने ऐसा अनुग्रह किया है जो हम एक तरह से तो स्पर्श कर ही सकते हैं। प्रार्थना करते हैं कि हम अपने चिन्मय आत्मा के द्वारा भी उनका स्पर्श कर सकें और कृष्ण लीलाओं में हम प्रवेश कर सकें। यही प्रार्थना करके किशोरी जी के और किशोर के हम चरणों में यही प्रार्थना करके अब हम लोग अपने धाम में हम लोग वहाँ पर चले जाएंगे। छठ को ना अष्टमी को वहाँ पर स्नान होता है, उसमें अधिकांश लोग वही आते हैं। कौन? जो राधा जी का स्वरूप नहीं समझते, वो समझते नहीं है, परसों आएगी, उसमें जगत के लोग सब आएंगे, किंतु जो प्रेम के भिखारी हैं वो तो सब समय आते हैं। उनको लड़के की जरूरत नहीं है, कन्या की जरूरत नहीं है, धन की जरूरत नहीं है, बल्कि ये सब का नाम कामनाएं सदा के लिए दूर हो जाएं, हृदय में प्रेम प्रवाहित हो, इसलिए हम लोग राधा कुंड में और श्याम कुंड में आते हैं। अनुग्रह करके वही दें। श्याम सुंदर
शिखंड शेखर,
बोलो बोलो, श्याम सुंदर शिखंड शेखर, स्मेर हास मुरली मनोहर, राधिका रसिक, मांग कृपा निधे स्वप्रिया चरण किंकरी कुरु, प्राणनाथ वृषभानुनंदिनी श्रीमुखाब्ज रसलोल षटपद राधिका पदतले स्थिति स्वामि भजामि रसिकेन्द्र शेखर, संविधाय दशने त्रिनम प्रार्थये ब्रज महेंद्र नंदन, अस्तु मोहन कवालिके
अति बल्लभा जन्मनी जन्मनी मधुश्वरी यही प्रार्थना करेंगे। जन्म जन्मांतर में हम राधा जी के चरणों कमलों को हम लोग प्राप्त कर सकें। धन जन पुत्र परिवार आएगा तुमको डुबा देगा, इसलिए खबरदार माना मत चाहना, बल्कि बंचे द्रम आदि भी और लोगों को जो चाहते हैं उनको जो कुछ है तो दे दो, और नहीं तो हाथ जोड़ करके बस कर दो। अभी हम लोग इनको बहुत अच्छा बहुत अच्छा
एक बोरी चामर की
वाह 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 बहुत सुंदर बहुत सुंदर
हजारों
वाह 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 बहुत